रोमन्स चैप्टर 3, रोमियो के पत्री का तीसरा अध्याय, और बहुत ही जल्दी हम बाइबल क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा अध्याय का हम 20वां पद में से शुरू करेंगे, और उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा कि हम पहला पद से क्यों नहीं अभी कर रहे हैं। तो 20वां पद को पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। That is Romans 3:20। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है, इसलिए समझदारी होगी कि हम पवित्र आत्मा से मदद मांगे, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ या उसका इंटरप्रिटेशन पवित्र आत्मा देता है। हम अपने बुद्धि से बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को देखने के बाद आखिर उसका निष्कर्ष जो है वो पाने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। क्यों ना हम प्रार्थना करें। Let's pray, ask the Lord for help। पिता परमेश्वर, हम इस समय इस अध्ययन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोले, ताकि हम उन बातों को समझ सके जो आज इस समय पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है, और जो हमारी समझ के परे है प्रभु वो हम समझ सके, यीशु मसीह के नाम से। एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, हम बाइबल की शिक्षा क्यों लेते हैं, बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जब हम शिक्षा लेते हैं यानी बाइबल की टीचिंग्स जो है हम जो सुनते हैं या रिटन टीचिंग्स हम जो पढ़ते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, या उसका कारण क्या होना चाहिए? बाइबल के अनुसार हर शिक्षा के पीछे एक कारण है परमेश्वर का, वो है एक व्यक्ति का बदल जाना, एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारी शिक्षा के द्वारा जो शिक्षा हम ले रहे हैं या जो शिक्षा हम खुद अपने अध्ययन से अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, तो वो शिक्षा से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे पास सिर्फ डेटा है, आज के यू की लैंग्वेज वी जस्ट हैव डेटा। और परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम बहुत बड़ा डेटा बेस बन जाएं। परमेश्वर ने इसलिए बनाया, इसी रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का 29वां पद में लिखा है, वर्स 29 चैप्टर 8, कि परमेश्वर चाहता है कि हम धीरे धीरे यीशु मसीह की तरह बन जाए, यानी यीशु मसीह में जो गुण है या जिन गुणों के द्वारा यीशु यीशु है वो हम में भी पाया जाए। एग्रीड डिसएग्री करते हो तो आप 29वें पद को पढ़ के देखिए, परमेश्वर की ये इच्छा है। तो इसलिए हर बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हर बार जब हम प्रचार सुनते हैं या हम शिक्षा सुनते हैं या लेते हैं या पढ़ते हैं, हमें ध्यान रखना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ना, जिसमें हम कई बार आधा घंटा लगाते हैं, कई बार 45 मिनट, कई बार कई घंटे लगाते हैं, इससे हमारा जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? तीसरा अध्याय का 20वां पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मैंने 20वां अध्याय से इसलिए शुरू किया कि पहला अध्याय से जो चर्चा चल रही है, अब ध्यान रखना, बाइबल की कोई भी बुक पढ़ते समय ध्यान रखना, जब ये किताबें लिखी गई थी उसमें चैप्टर्स नहीं थे, उसमें वर्सेस नहीं थे। आज तो हमारे लिए बहुत आसान है, मैंने कहा कि तीसरा अध्याय का 20वां पद, आपने जल्दी से बाइबल खोल ली, पन्ना पलट गए और आप 20वां उस जगह पे पहुंच गए। लेकिन जब ये बाइबल लिखी गई थी आज से 2000 साल पहले, उसमें चैप्टर्स नहीं थे। यानी ये जो पत्री है ये पहला अध्याय का पहला पद से लेके 16वां अध्याय का आखिरी पद तक एक विचार चल रहा है, उस एक विचार के अंदर बहुत सारे विचार और भी है। तो ये जो 20वां पद मैंने इसलिए शुरू किया कि इस 20वां पद में आके पौलुस एक और चीज बता रहा है, पवित्र आत्मा में होगे, इसलिए हम वहां से अध्ययन करेंगे। बाइबल क्लास में मैं आपको पहले अध्याय से ही शुरू कराऊंगा, और रोमियो की पत्री से शायद हम शुरू करेंगे, क्योंकि बल्कि गलातियों की पत्री सबसे पहले लिखी गई थी, रोमियो की पत्री बाद में लिखी गई है। लेकिन पहली शताब्दी में एडी 230 में कुछ था, जब हमारे पूर्वजों ने, आत्मिक पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, पौलुस और तिमोथियस के जाने के बाद जिनको एपोस्टोलिक फादर्स कहते हैं, उन्होंने नई वाचा के पुस्तकों को ठीक से इकट्ठा की, इसके बाद उसको क्रमानुसार लगाया, तो रोमियो की पत्रियों को पहले लगाया, तो इसलिए हम शायद रोमियो की पत्री से शुरू करेंगे। अब मैं आप पढ़ूंगा आपके साथ, आपको बताते जाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। 20वें पद में से हमें पता चल जाता है कि जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, या व्यवस्था जो है, व्यवस्था के द्वारा हमें पाप की पहचान होती है, हमें पता चल जाता है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। लेकिन व्यवस्था के पास एक मनुष्य को उसके पाप से छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं थी। अब व्यवस्था क्या है? व्यवस्था शब्द बाइबल में सबसे पहले निर्गमन के पुस्तक से लेके व्यवस्था विवरण तक जो पुस्तक है, यानी चार पुस्तकों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति से लेके मलाखी तक जो बुक्स है, उन सारे बुक्स के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। पूरी बाइबल के लिए, यानी प्रकाशित वाक्य तक जो पूरी बाइबल है, उसके लिए भी व्यवस्था शब्द इस्तेमाल हुआ है। और निर्गमन के पुस्तक में 20वां अध्याय में परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, उसके लिए भी व्यवस्था शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसलिए व्यवस्था शब्द को पढ़ते हुए आपको ध्यान देना है कि किसके बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, व्यवस्था जो जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लॉ पढ़ते हैं, ग्रीक में नोमोस पढ़ते हैं NOMOS, और हिब्रू भाषा में थोरा पढ़ते हैं TORAH। थोरा का मतलब है इंस्ट्रक्शन या टीचिंग, शिक्षा। ये थोरा शब्द जो है, इसकी जो मूल पद है वो है वर्ष VARSH, जिसका मतलब है, अगर राम दिशा बता रहा हूं तो व्यवस्था का मतलब क्या है? शिक्षा जो हमें रास्ता बताता है। लेकिन फिर हिंदी में हम व्यवस्था क्यों इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेजी में लॉ क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल आ सकता है ना, मन में आना चाहिए। तो अंग्रेजी में हम शिक्षा, अंग्रेजी में हम टीचिंग्स क्यों नहीं लिखते और हिंदी में हम शिक्षा क्यों नहीं लिखते? आजकल के ट्रांसलेशन में ऐसा ही लिखा जाता है। अगर आपके पास गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन है तो उसमें यीशु मसीह ने लूका का 5वां अध्याय में कहा, जब बाकी सारे बाइबल्स में व्यवस्था लिखा है, गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन कहता है मोसेस टीच, 5:17 पद में। ऐसा क्यों ट्रांसलेशन में आ रहा है? क्योंकि 3 BC में, यीशु मसीह के आने से पहले 3 BC में, पुराना नियम को यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया था, पुरानी वाचा की पुस्तकों को। उसको कहते हैं सत्वजिल, द सत्वजिल बाइबल। ऐसा क्यों कहते हैं? उसको ट्रांसलेट करने के लिए 70 स्कॉलर्स ने मेहनत की थी। आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं और उस बाइबल का अब्रीविएशन आपको मिलेगा रोमन न्यूमरल्स में 70, एक L, कैपिटल L, XX, 50, 10 और 10, 70। उस समय उनके पास थोरा के लिए कोई उचित शब्द नहीं था यूनानी भाषा में, आज भी नहीं है। इसलिए उन्होंने नोमोस लिखा, और नोमोस के कई बहुत सारे मतलब है, उनमें से एक मतलब है नियम। इसलिए हम लोग अंग्रेजी में लॉ लिखते हैं, हिंदी में व्यवस्था लिखते हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि व्यवस्था या नियम उचित शब्द नहीं है, वो शिक्षा है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस जमाने के लोगों को एक शिक्षा दी थी, एक रास्ता बताया था, वो है। क्योंकि अगर हम इसको अंग्रेजी में लॉ कहते रहेंगे और हिंदी में व्यवस्था करते रहे कहते रहेंगे तो हमारे दिमाग में व्यवस्था रहेगा। जब भी हम पुरानी वाचा के पुस्तकों को पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में रहेगा व्यवस्था। हमेशा व्यवस्था नहीं है, वो शिक्षा है। शिक्षा किस लिए है? इंसान को रास्ता बताने के लिए। रास्ता क्यों हम पता चले? ताकि हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये है रास्ता, ताकि हम उसमें चल सके। आज हमें बता रहा है उस जमाने में जो रास्ता बताया गया था या जो शिक्षा मिली थी, उसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनते। क्योंकि उस शिक्षा के द्वारा उस जमाने के लोगों को ये मालूम चल जाता था कि वो कितना पापी है और किस वजह से वो पापी है। लेकिन अब 21वें पद, अब कब की बात हो रही है? वर्तमान में। अब हम पुराने जमाने में नहीं है, समय बदल गया, ठीक है। आज 2018 में, 18 की बात है। लेकिन अब परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता बनाया है कि एक व्यक्ति उस शिक्षा के बिना या उस शिक्षा में से ना होकर भी परमेश्वर के नजरों में धर्मी बन सकता है। और ये बात की गवाही जो है उस जमाने की शिक्षा, यानी जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, अब ध्यान से देखिए 21वां पद, व्यवस्था यानी उस जमाने की शिक्षा और भविष्यवक्ता देते हैं। तो उस जमाने की टीचिंग में, मूसा की टीचिंग में ये बात लिखी गई है कि एक समय आएगा जब लोगों को इसके अनुसार नहीं चलना होगा, क्योंकि उससे भी एक बेहतरीन रास्ता है धार्मिकता पाने के लिए। और ये धार्मिकता जो है हर इंसान के लिए है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, 22वां पद। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या यहूदी हो या अन्य जाति हो। हम क्या थे? हम अन्य जातियों में से, हम में से कोई भी यहूदी नहीं था, ना हमारे पास छोड़ा यानी पुरानी वाचा की पुस्तकें थी। हमारे पास थी नहीं पहले, हमने कभी नहीं सुना था, मतलब मुझे छोड़ के, मतलब आप लोगों ने कभी नहीं सुना था। इससे कोई मतलब भी नहीं था और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले जानते थे या नहीं जानते थे। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने से हर इंसान धर्मी बन सकता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? 23वें पद में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया, यहूदियों ने भी पाप किया जिनके पास शिक्षा थी, और जो अन्य जाति में से है उन्होंने भी पाप किया जिनके पास वो शिक्षा नहीं थी, तो दोनों बराबर हो गए ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से या परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर है। परमेश्वर अपनी जगह पर है, लेकिन परमेश्वर की महिमा इंसान के जीवन में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई क्योंकि सबने पाप किया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था, अपने पास रहने के लिए बुलाया था। आदम और हवा कहाँ रहते थे? अदन वाटिका में रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर से रोज बातचीत होती थी। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। पाप के कारण बाहर आ गए, हमने सपने भी उस आदम के कारण, हम सब पापी है, परमेश्वर की महिमा से बाहर है, लेकिन अंदर आ सकते हैं, परमेश्वर के पास फिर से आ सकते हैं, फिर से उस महिमा को हम हासिल कर सकते हैं। कि कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ये सबके लिए है। लिखा है 24वें पद और 25वें पद में कि पदों में कि परमेश्वर ने अपने उस अनुग्रह के कारण उन सबको जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया धर्मी ठहराया, और ये फ्री में किया है। सेत मेर जो लिखा है फ्री में, यानी उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। सुबह सर्दी के महीने में दिसंबर 25 तारीख को सुबह सुबह बिना चप्पल पहने आपको 2 किलोमीटर तक नंगे पाव चलना नहीं पड़ा कुछ हासिल करने के लिए, या दूर किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा परमेश्वर को ढूंढने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। या हर 10 शनिवार या 9 शनिवार लगातार कुछ खास जपमाला नहीं, कुछ भी ऐसा करना नहीं पड़ा। आपने सिर्फ विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है लेवी व्यवस्था, अब बात यह है ना कि अगर हम वापस पुरानी वाचा के पुस्तकों में नहीं जाएंगे हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। वहां लिखा है कि जब पाप किया जाता है, पाप का जो प्रायश्चित है, पाप की जो कीमत है, वो लहू के द्वारा चुकाया जाएगा। अगर मैं अपने पापों के लिए अपना लहू बहाऊं तो क्या नुकसान क्या होगा मुझे? चल मैं आपको उदाहरण पूछता हूँ, जल्दी से आप जवाब देंगे। अगर अमित तुम अपने पापों के लिए तुम अपना लहू बहाओगे तो क्या होगा? कोई गारंटी है कि परमेश्वर के पास पहुंचेगा? कोई गारंटी नहीं है। अपने पाप के लिए मैं अपना लहू बहाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, सीधा सीधा पहुंचेगा कहां वो तो मैं नहीं कह सकता, अभी कह सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मसीह पर विश्वास करने से पहले की बात। अभी तो कुछ भी हो जाए हम सीधा वहीं पहुंचेंगे, वो तो गारंटी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, अगर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते तो हम अपना लहू तो नहीं बहा सकते थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया। और लिखा है कि जब परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया, डिक्लेयर किया, ध्यान रखना परमेश्वर ने ये डिक्लेयर किया, कहां पे डिक्लेयर किया होगा कभी आपने सोचा है? आज सोचिए, जब परमेश्वर ने हर उस व्यक्ति को जिसने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, किसी भी देश से क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक इंसान ने ऐसा किया, परमेश्वर ने स्वर्ग पर और स्वर्गीय स्थानों पर और पूरी पृथ्वी पर इस बात का ऐलान किया कि आज से ये व्यक्ति धर्मी है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। ये आपके बारे में कह रहा हूं मैं, और मेरे बारे में भी। अब एक मिनट, जोरदार तालियां बाद में आएगी जब आपको पता चलेगा कि धर्मी घोषित करने का मतलब क्या है। हम पढ़ के निकल जाते ना, आज हम पढ़ के बाकी हम रुक जाएंगे यहां पे। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। ठहराया शब्द थोड़ा सा कमजोर है, एक्चुअली यूनानी भाषा में जो लिखा ना उसका मतलब है कि उसने डिक्लेयर किया, ठहराया मतलब आज से तू धर्मी है। एक होता है परमेश्वर ने पूरा माइक ले लिया, परमेश्वर को माइक की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग से हम सोच रहे हैं ना, और बड़े 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 स्पीकर्स लगाए, ठीक है, ताकि दूर दूर तक पहुंच जाए, सारे इंटरनेट के चैनल्स खोल दिए, ठीक है, सबके व्हाट्सएप में आया, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने बताया कि अमित क्योंकि मुझ पर विश्वास किया, यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, आज से ये धर्मी है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझने के बाद और मजा आएगा। लिटरली यूनानी भाषा में जो लिखा है ना उसका मतलब है कि उसने धार्मिकता की पोशाक आपको पहना, परमेश्वर ने आपको ऊपर से नीचे तक एक वस्त्र पहनाया जिसका नाम है धार्मिकता। और वो उसने कब बनाया? ये धार्मिकता का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े हो सकते हो जैसे आपने कुछ किया ही नहीं गलत। अब सोचिए इस बारे में, आप जब परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हो, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाकी लोगों के लिए नहीं है अभी फिलहाल, क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जिन्होंने दिल से इस बात को ग्रहण किया कि यीशु मैं पापी था, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, उनके लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने यह घोषित किया कि आप सब धर्मी हैं, यानी आप ऐसे खड़े हो सकते हैं जैसे आपने कभी कोई पाप किया ही नहीं। और ये क्योंकि परमेश्वर ने किया है, कोई हटा नहीं सकता। और क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर से पहना रखा है, तो परमेश्वर जब आपको देखता ना, उन्हें क्या दिखता होगा? सिर्फ धार्मिकता दिखती है। लेकिन उससे पहले एक काम हुआ, ऐसा करने से पहले हम अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं? आप प्रेस करके सब कुछ करके लिए कब पहनते हैं? ओकेशन में पहनते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? गर्मी में पसीना छूट रहा है, बाहर से आया, अच्छे प्रेस किए हुए नए और एक्सपेंसिव कपड़ा ऐसे उठा के हम पहन लेते हैं अच्छी तरह, फ्रेश हो के, क्या अंग्रेजी मार रहा है, ठीक है, अच्छी तरह स्नान करके, है ना, नहा के, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया, आपने जिस समय यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के लहू से आपका एक अच्छा खासा स्नान हुआ है। उस स्नान से क्या हुआ कि उस समय तक जितने भी पाप का जो दब्बा लगा हुआ था ना, वो धुल के साफ हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने नंगा मत घूमना, ये पहन लो, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब सारे पाप धुल गए, उसके बाद उसने पहना दिया अपनी धार्मिकता। कुरिन्थियों की पहली पत्री का पहला अध्याय में ही लिखा है, और दूसरे कुरिन्थियों में भी ये बात लिखी गई है। पहले कुरिन्थियों का शायद एक मिनट में ढूंढ के आपको बताता हूँ। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 30वां पद है उसमें, लास्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था उसमें था। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो यीशु मसीह जो है हमारी धार्मिकता, यानी धर्म का काम उसने किया, और जो उसने किया उसके वजह से परमेश्वर ने वही धार्मिकता हमारे ऊपर डाल दी। आज हम सबसे मतलब वे सब जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, सब नहीं, इसलिए मैं जब हम सब बोलता हूँ, सब आप समझते हैं कि ये उनके बारे में है जिन्होंने विश्वास किया। जिन्होंने नहीं विश्वास किया उनके लिए अभी निमंत्रण है कि आप ये कर सकते हो, आप ये हासिल कर सकते हो। कि आज सोचिए, आप जब परमेश्वर के पास जाते हो, आपने बहुत सारे गुनाह किया होगा, बहुत कुछ गड़बड़ किया होगा, फिर भी जब परमेश्वर आपको देखता है ना, परमेश्वर को अपनी धार्मिकता दिखती है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता इसलिए पहनाई क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता जो है वो बहुत ही गंदी है। यशायाह नबी की पुस्तक कहां पर पाई जाती है? पुरानी वाचन में 64वां अध्याय में, 64:6 में लिखा है कि हमारी धार्मिकता जो है मेले चितड़ों के समान है। और ये जो मेले चितड़े है ना, बहुत गंदा शब्द है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आप हिब्रू में चेक करेंगे, आपको पता चलेगा ये एक ही बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ है और बहुत गंदी चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता जो है उस चीज से भी बदतर है, उसको लेके तुम मेरे सामने नहीं आ सकते हो। मतलब क्योंकि वो ऐसी घृणित चीज है जिसको आप कभी देखना नहीं चाहते, जिसकी स्मेल आप कभी सूंघना नहीं चाहते। इसी कारण यशया नबी ने जब परमेश्वर को देखा, यशया नबी की पुस्तक में 6वां अध्याय में 5वें पद में, जब यशया ने परमेश्वर को देखा, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसने कहा, मुझ पर हाय, क्यों? मैं नष्ट हुआ, मैं तो खत्म, आई एम गॉन। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को देख लिया। क्या मतलब? उसने परमेश्वर को देखा कि क्या मतलब है? उसने ये देखा कि परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना धर्मी है, और मैं क्या हूं। परमेश्वर, ध्यान रखना, परमेश्वर का दर्शन अगर हमें मिलता है, जो लोग हम लोग कहते हैं ना, परमेश्वर ने मुझे ये कहा, परमेश्वर ने मुझे वो कहा, इसका मतलब परमेश्वर ने बात किया, इसका मतलब आपने कुछ सुना। जब परमेश्वर हमसे बात करता ना, हमें ये रियलाइजेशन हमेशा होता है कि हम कितना पापी थे। अभी 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 का पाप का नहीं, हम पहले कितने पापी थे, और परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए जो मैं अभी कर रहा। हर बार जब परमेश्वर से कोई सुनता ना, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हमें देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है। परमेश्वर से सुनने के बावजूद पुरानी वाचा में बहुत सारी बातें हैं हमारी शिक्षा के लिए, जिससे हम सीख सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि नई वाचा में वो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पुरानी वाचा में पहले से लिखा है। एक और रेफरेंस आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं बाद में, कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 5वां अध्याय का 21वां पद में भी लिखा है कि यीशु मसीह स्वयं हमारी धार्मिकता है, हमारी पवित्रता ही है, और वो हमारे लिए लिखा है कि वो स्वयं हमारे लिए छुटकारा बन गया। इस कौन सा पद बताया था मैंने आपको अभी, 2:5:21 उसमें ऐसा लिखा है क्या? वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। फिर क्या हुआ? ओके, तो पहली कुरिन्थियों का 1:30 में लिखा है कि वो उसमें हम, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो हमारा छुटकारा यीशु मसीह स्वयं है। ये जो छुटकारा शब्द है, इसका मतलब है कि हम पहले गुलाम थे। ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसका असली मतलब ये है कि इसका असली मतलब है गुलामों का बाजार, ठीक है, गुलामी बाजार, जहाँ पे गुलाम बिकते हैं। और यीशु मसीह ने, हम जो शैतान के गुलाम थे, पुरानी वाचा में इसराइली लोग गुलाम थे एक समय मिस्र देश में, इसी तरह हम अपने देश में शैतान के गुलाम। यीशु मसीह आया, हमें गुलामी के उस अवस्था में देखा, उसने हमें खरीद लिया, खरीदने के लिए पैसे देना हो, कीमत चुका दी। उसके बाद उसने उस गुलामी की दशा में हमें नहीं छोड़ा, हमने जब खरीद लिया, उसने खरीद के बाहर ले आया ताकि दोबारा हमारी बिक्री ना हो, कि हम किसी और का गुलाम ना बन जाए, हमेशा के लिए उसने बाहर निकाला। ये जो छुटकारा शब्द हम हिंदी में पढ़ते हैं या रिडम्पशन हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी गहराई रखने वाला शब्द है। उसमें ये तस्वीर दिखती है, एक गुलामी बाजार, एक यीशु मसीह आया, हमें खरीद लिया, फिर बाहर ले गया ताकि दोबारा कभी भी हम गुलाम ना बने किसी का। इसलिए इसको छुटकारा कहते हैं, हमेशा के लिए छुटकारा हुआ है। पवित्र शास्त्र के अनुसार जब हमने विश्वास किया, यीशु मसीह हमारे अंदर भी आ गया, तो परमेश्वर ने जो धार्मिकता का पोशाक हमें पहना लिया है, वो इसलिए इस तरह से है कि यीशु मसीह को ही हमारे अंदर डाल दिया, क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर जब हमें देखता है, उसे कौन दिखता है? यीशु मसीह दिखता है। यह है धार्मिकता, यह है असली धार्मिकता। आप और ये पुरानी भाषा में लिखा है, बदन सीधा 103 में दाऊद कहता है कि वो मेरे पापों के अनुसार या हमारे पापों के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता। आने वाले समय की बात भविष्य को देखते हुए दाऊद ने कहा, पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है उतनी दूर उसने हमारे गुनाहों को किया है। आज तक हम नहीं बता सके कि पूर्व पश्चिम से कितनी दूरी पर है। मैंने एक बार बताया था, आपको समझाया था, आप पूरब की ओर जाते चलते जाइए, पूरब आपको मिलेगा नहीं, आप घूम के वहीं आएंगे जहां से आपने शुरू किया था। उतनी दूर परमेश्वर ने आपके गुनाहों को कर दिया, जो गुनाह आपके जीवन में यीशु मसीह में आने से पहले थे। उसके बाद क्या लिखा है रोमियो की पत्री में, 3 अध्याय में ही है ना, अभी सबको याद है ना कि हम कहां पे थे? हम 26 में आ गए थे, ओके, 25वें पद में थे हम। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ वो 25वें पद में, कि उससे यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें। यानी उस समय जो हमने पाप किए थे, उन पापों को लेके परमेश्वर ने क्या किया, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद की, बोला मैं नहीं देख रहा हूँ उन पापों को जो यीशु मसीह में विश्वास करने तक तुमने किया है, मैं नहीं देख रहा हूँ उन पापों को, क्योंकि मैं तुम्हें निला रहा हूँ। और लिखा है यीशु मसीह को प्रायश्चित ठहराया। अब ये प्रायश्चित को समझने के लिए फिर आपको पुरानी वाचा में जाना पड़ेगा। पुरानी वाचा में ये जो शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, प्रायश्चित हिंदी में, या प्रोपिशिएशन अगर आपके पुराने वर्जन में है, तो इसका मतलब है वो इसराइलियों के पास एक आराधना का जगह होती थी, जिसमें एक पवित्र स्थान होता था, फिर उसके पीछे अंदर एक अति पवित्र स्थान होता था, उसमें फिर एक वाचा का संदूक होता था, उस संदूक का एक ढक्कन होता था, उसको प्रायश्चित का ढकना बोलता था। ये जो प्रायश्चित शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा ना, ये उसी ढकना को कहते हैं। और उसमें उसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, द मर्सी सीट। मर्सी सीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की करुणा दिखती है, वहां से परमेश्वर की करुणा मानव जाति पर आती है। क्योंकि महायाजक जब उस जगह पर जाता था, जो कि साल में एक बार जाता था उस जमाने में, वो क्या लेके जाता था? वो लहू लेके जाता था। फिर कहां पे क्या करता था? वो चढ़ाता नहीं था, क्या कहां पे उस लहू को छिड़कता था? वो उस ढकने के ऊपर। आपको याद है एक बार बहुत सालों के बाद दाऊद के समय में ये वाचा का संदूक यरूशलेम की ओर लेके जा रहे थे लोग, और किसी ने उस ढक्कन को खोल के उसमें झांकने की कोशिश की, और जितने लोगों ने ऐसी कोशिश की सब मर गए। क्यों मर गए? अब जरा सोचिए, आपको पता चलेगा उस वाचा के संदूक में क्या था। उस वाचा के संदूक में पुरानी वाचा की शिक्षा थी और वो ढक्कन हमेशा बंद रहता था। अति पवित्र स्थान में वो ढक्कन कभी खोल के नहीं रखता था, बंद रखता था। बंद रखने के बाद उसके ऊपर लहू होता था, उस लहू की वजह से लोग जीवित रहते थे। जब लोगों ने उस ढक्कन को खोला उसमें लहू था, इसलिए लोग, मैं समझता कि लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि उस लहू के बिना आप परमेश्वर की उस पुरानी वाचा के इसमें नहीं जा सकते थे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अगर ये गलत है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप अपनी स्टडी खुद कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के आप रोमियो के पत्री में देखेंगे, परमेश्वर की करुणा के बिना, सिर्फ अगर हम व्यवस्था की या उस जमाने की शिक्षा को देखते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते। उस समय भी परमेश्वर की करुणा थी, उसका अनुग्रह था, आज भी है। शुरुआत में मैंने बोला ना, शिक्षा के पीछे एक कारण है कि हमारा परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो। हमें आज पता चला या पहले से भी जानते थे, लेकिन आज फिर से हमने उस बात को दोहराया कि हम धर्मी हैं, और धर्मी होने का मतलब है कि परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है सारे यूथ मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें छूट है। हम कुछ भी करें, जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक, हम इसको पाप करने की छूट ना समझें, और दूसरा, यदि तो हम बोल नहीं सकते, जब हम पाप कर लेते हैं, पाप करने के बाद जब हमें पता चले कि हमने गलत किया है, पाप किया है, तो तुरंत अपने पापों का अंगीकार करें और हियाव के साथ परमेश्वर के सामने जाए, क्योंकि वो आपके पापों को नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा? उसको यीशु मसीह दिखेगा, उसको एक धर्मी जन दिखेगा, वो धर्मी पोशाक दिखेगा। उसे मालूम है कि आपने पाप किया है, लेकिन उस पाप के अनुसार वो आपको प्यार नहीं करेगा, अपनी भलाई के अनुसार आपको प्यार करेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसके पास जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं, अगले संडे यदि परमेश्वर की इच्छा है तो हम शाम को जारी रखेंगे। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू।